जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम स्कंद नौध्याय 11 श्लोक संख्या 15 मुनौ निक्षिप्य तनयो सीता हत्रा विवासिता ध्यायन्ति रामचरणो विवरं प्रविश प्रविशेष मुनो निक्षिप्य तनयो मुनो निक्षिप्य तनयो सीता भर्त्रा विवासिता सीता भर्त्रा विवासिता ध्यायन्ति रामचरणौ विवरं प्रविशेषसः विवरं प्रविशेषः मुनो निक्षिप्य तनयो सीता भर्त्रा विवासिता ज्ञायन्ति रामचरणो विवरं प्रविश्वेशः निक्षिप्य तनयो सीता भद्रा विवासिता ज्ञायन्ति रामचरणौ विवरम् अन्वेषः ज्ञायन्ति रामचरणौ विवरम् अन्वेषः निरीक्ष्य तनयो सावत्रा विवासिता ज्ञायन्ति रामचरणो विवरम् परिवेशः नो निरीक्ष्य तनयो सीतावत्रा विवासिता ज्ञायन्ति रामचरणो विवरम् प्रविवेशः नो निक्षिप्य तनयो सीतावत्रा विवासिता ज्ञायन्ति रामचरणो विवरम् प्रविवेशः क्षिप्यनयो सीताभद्रा विवासिता ज्ञायन्ति रामचरणो विवरम् परिवेशः क्षिप्यनयो सीताभद्रा विवासिता ज्ञायन्ति रामचरणो विवरम् प्रविवेशः निक्षिप्य तनयो सीताभद्रा विवासिता ज्ञायन्ति रामचरणो विवरम् प्रविवेशः
मुनौ वाल्मीकि मुनि को निक्षिप्य बार देखकर तनयाव लव तथा कुश दोनों पुत्र सीता सीता देवी भर्त्रा अपने पति द्वारा विवासिता वनवास दी गई ज्ञायन्ति ध्यान करती रामचरण भगवान राम के चरण कमल विवरम पृथ्वी के भीतर प्रविवेश प्रवेश कर गई हाँ संदेह अनुवाद और तात्पर्य हृदय ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद अपने पति द्वारा परित्याग सीता देवी ने अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि की देखरेख में छोड़ दिया तत्पश्चात भगवान रामचंद्र के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी में प्रविष्ट हो गई तात्पर्य सीता देवी के लिए रामचंद्र से बिछड़ कर रह पाना असंभव था अतएव वे अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि के संरक्षण में छोड़कर पृथ्वी में समा गई। समुद्यादिरांदस्य ज्ञानांजनशलाकं शिक्षिरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सर्वललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 15वां श्लोक है, लेकिन 7वां श्लोक से ही तात्पर्य नहीं है। इसे 7वां श्लोक से पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। आप सबको मालूम है भगवान रामचंद्र ने सारा राज्य और सारा संपत्ति ब्राह्मणों को प्रदान कर दिया था, और ब्राह्मणों ने सोचा कि इस संपत्ति से हम क्या करेंगे। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, वापस अपनी संपत्ति को भगवान रामचंद्र को प्रदान कर दिए, और प्रदान करते तो इस प्रकार स्तुति करने लगे भगवान रामचंद्र का। तो स्तुति करने के एक श्लोक कर लिया गया था, तो 6वां श्लोक है, और स्तुति का दूसरा श्लोक जो है वो 7वां श्लोक है। नमो ब्राह्मण्य देवस्य रामायासुंठमेदसे उत्तम श्लोक दुरायाय न्यास्तदण्डार्पिताङ्ग्रये। नमो ब्राह्मण्य देवाय, हे रामचंद्र आप ब्राह्मणों के देव हो। रामायाकुंठमेदसे, रामायाकुंठमेदसे, हे राम आपके जो बुद्धि है और मेधा है या आपकी जो स्मरण शक्ति है उसमें कोई भी कमी नहीं होता है, उसमें जरा सा भी टूटिया नहीं होता है। उत्तम श्लोक दुर्याय, आप बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हो, अनेकों अनेक उत्तम श्लोकों के द्वारा आपको गाया जाता है। न्यष्ट दंडार्पिताङ्ग्रे, बड़े बड़े जो ऋषि मुनिगण हैं आपकी चरण कमलों को वो सेवा करते हैं, जो एक तरीके से बताया जाए तो तीनों कुणों से परे है, यानी मुक्त जीव भी आपकी चरण कमलों की सेवा करते हैं। इच्छा विश्लेषण के द्वारा ब्राह्मण स्तुति करते भगवान रामचंद्र का। सबसे पहला है कि नमो ब्राह्मण्य देवाय, पिछली बार भी श्लोक में, इसके पहले वाले श्लोक में नमो ब्राह्मण्य देवाय शब्द आया है। भगवान ब्राह्मणों को खास करके प्रेम करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण वेद जानते हैं और वेदों का सार को जानते हैं और वेदों का प्रचार करते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वही व्यक्ति मेरे लिए बहुत अत्यंत प्रिय है, उससे बढ़कर कोई और प्रिय नहीं है जो इस भगवद गीता ज्ञान को प्रचार करता है। इसलिए भगवान को अति प्रिय बनने के लिए हमको क्या करना है, नाम को, उनकी वाणी को प्रचार करना है। रामाय आकुंठ मेधसे, भगवान रामचंद्र की बुद्धि में कोई भी कुछ भी कमी नहीं होता है। वो कोई भी सोचते हैं, कोई भी योजना बनाते हैं, एकदम परफेक्ट रहता है, उस पर कोई टूटियां नहीं रहती है। कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है, भगवान ने जगत बनाया है, इतने दोषों के साथ क्यों बनाया है, बहुत सारे दुख क्यों दिया है। इसका जवाब ये है, भगवान ने ये जगत को पूर्ण बनाया है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन जब इस जगत को हम वास्तविक उद्देश्य के अनुसार जो जगत का उद्देश्य को नहीं समझते हुए जब इस जगत में जिएंगे, तब हमको सारे प्रकार की कमियां अनुभव होता है। भगवान की बुद्धिहीनता की वजह से नहीं है, बल्कि हमारी बुद्धिहीनता की वजह से कमी महसूस होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न पूछता है, कोई परीक्षा में कोई प्रश्न आता है गणित का, वो बच्चा उस परीक्षा में वो प्रश्न का समाधान करने बैठता है तो उसको समाधान मिलता नहीं है, तब वो सोचता है प्रश्न ही गलत है। अक्सर ऐसा हुआ करता था जब परीक्षा में गणित के प्रश्न आते थे, उसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था। मैं जाके टीचर को कह रहा था प्रश्न ही गलत है। लेकिन हमारा सोल्यूशन, हमारी बुद्धि में कमी है, जो प्रश्न पूछने वाला है उनकी बुद्धि में कोई कमी नहीं है। वैसे ही भगवान की योजना उनकी बुद्धि में, कृष्णायाकुंठमेधसे रामायाकुंठमेधसे, भागवत में ये कृष्णायाकुंठमेधसे शब्द भी आया है। कृष्ण हो राम हो, अकुंठमेध अकुंठ मतलब जिसके अंदर कोई कुंट, कोई कमी, कोई प्रकार का दुख या गलतियां नहीं होता है, ऐसा मेधा है कृष्ण का। उत्तम श्लोक दुराया या। तो उत्तम श्लोक दुराया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उत्तम श्लोक, भगवान रामचंद्र उत्तम श्लोक आ गया है। उत्तम श्लोक शब्द का तीन अर्थ है। पहला अर्थ है कि भगवान को उत्तम श्लोकों से, यानी सबसे उच्चतर की जो श्लोक है, शब्द है, उनके द्वारा स्तुति किया जाता है, वही उत्तम श्लोक का। दूसरा अर्थ है कोई भी श्लोक या कोई भी वर्णन भगवान के लिए किया जाता है तो उत्तम हो जाता है, क्योंकि भगवान के लिए किया गया है। तीसरा अर्थ है उत्तम श्लोक का, कोई भी श्लोक जो भगवान का वर्णन किया जाता है, उस श्लोक को उच्चारण करने से हम उत्तमा हो जाएंगे, यानी उत्तमा का अर्थ क्या है कि तमस से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे भागवत या भगवद गीता के श्लोकों को बार बार उच्चारण करने से हमें भौतिक जगत से परे या तमस जो है उससे परे हो जाएंगे। ये उत्तम श्लोक का तीन अर्थ है। उत्तम श्लोक दुर्याया न्यस्त दंडात पितांग्रे, जो भौतिक जगत से परे यानी मुक्ति बाजार निवास हो, मुक्त लोग भी जिनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, वो भी भगवान रामचंद्र की वो सेवा में मग्न रहते हैं। तो ब्राह्मण लोगों ने इस प्रकार स्तुति किया। स्तुति करने का सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कदाचित लोक जिज्ञासुर गूढ़ो रात्रिम अलक्षित चरम वाचो श्रृणोद्रामो भार्यामुद्दिश्य कस्यचित। एक बार भगवान रामचंद्र कदाचित कहते हैं कि एक दिन लोक जिज्ञासुर का अर्थ क्या है, लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये राजा का कर्तव्य होता है, वो ये जानना उचित जरूरी है कि लोगों का उनके बारे में क्या विचार है, क्योंकि ये स्वाभाविक है, कोई भी राजा है उसके सामने आके कोई उनका निंदा नहीं करेगा। निंदा करना है तो कहां से करेंगे, पीछे पीछे करेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं निंदा क्यों करते हो, पीछे पीछे क्यों करते, आगे आगे कहो, वो कभी होने वाला नहीं है। खास करके जो शक्तिशाली होता है, कोई राजा होता है, कोई पदवी पे है, उनके बारे में जो प्रजा होती है, वो प्रजा जो है उनके सामने आके नहीं बोलती है, वो पीछे पीछे ही बोलते हैं। तो इसलिए भगवान रामचंद्र के मन में जिज्ञासा हुई, क्या लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे राज्य के बारे में या मेरे कार्यवाही के बारे में वो लोग खुश है कि नहीं। तो ये जानने के लिए भगवान रामचंद्र गूढ़ो रात्रिम अरक्षित ही गूढ़ रूप धारण किए, एक भिखारी का रूप धारण किए ताकि वो कोई पहचान नहीं पाए भगवान रामचंद्र है, और किसी को मालूम नहीं था। रात्रम रात्रि के दिन क्या किए, अलक्षित ही कोई देख नहीं रहा था, गुप्त रूप में किसी को बताए बिना भगवान रामचंद्र रात को निकल पड़े। चरम वाचो सुनो द्रामो, जब वो चल रहे थे तो उस समय एक वाणी को सुना उन्होंने, वाच अश्रुणो सुना, क्या सुना, भार्याम उद्दिष्ट कश्चित, एक व्यक्ति था उनकी भार्या को उद्दिष्ट में रखते हुए वो कुछ बोल रहा था, नाहम विवर्यामि त्वाम दुष्टान, तो वो डांट रहा अपनी पत्नी को, नाहम विवर्यामि, मैं तुमको देखभाल नहीं करूंगा क्योंकि तुम दुष्ट हो, त्वाम दुष्टम असतीम परवेशिगाम, तुम असती हो, तुम सती नहीं हो क्योंकि पर वेमशगाम दूसरे व्यक्ति के घर में तुम गए थे, और त्रैण्यो ही विवर्यात सीताम, भगवान रामचंद्र वो त्रैण्य है, ये डांट रहा अपनी पत्नी को, मैं थोड़े ना रामचंद्र त्रैण्य हूं। त्रैण्य का अर्थ है जो पत्नी है बहुत आसक्त है उनको त्रैण्य कहा जाता है। तो इस व्यक्ति ने कहा कि रामचंद्र जैसा मैं त्रैण्य थोड़ी ना हूं, दूसरे घर में जाने के बाद भी पराये पुरुष के साथ में रहने के बाद भी अपनी पत्नी को अपने पास रखना, सीताम राम न अहम भजे पुनः, ना हम भजे पुनः, वापस मैं स्वीकार नहीं करूंगा तुमको, मैं थोड़ी ना वो त्रैण्य राम जैसा हूं। तो ये व्यक्ति ने भगवान रामचंद्र को त्रैण्य कहा, तो भगवान रामचंद्र सोचने लगे, मैंने सीता को अपने पास रखने की वजह से लोग मेरा निंदा कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, चलो सीता को मैं त्याग कर दूंगा। तो एक राजा कैसे होना चाहिए, भगवान रामचंद्र ने इधर एक बहुत सुंदर उदाहरण पेश किया। दो उदाहरण दिया जाता है शास्त्र में, एक है चंद्रमा के ऊपर दाग, दूसरा है सफेद कपड़े के ऊपर दाग। चंद्रमा में भले ही दाग है लेकिन चंद्रमा को सब लोग चाहते हैं, सफेद कपड़े के ऊपर थोड़ा सा भी दाग है सब निंदा करने लग जाते हैं, देखो देखा कितना गंदा है, हर जगह सफेद है लेकिन लोग क्या कहते हैं, गंदा कपड़ा बोलेंगे। तो जो खास करके लीडरशिप के पोजीशन में है, खास करके राजा की पदवी में है, उनको बहुत सतर्क होना चाहिए इस बात के ऊपर कि एक सफेद कपड़े के ऊपर जिस प्रकार दाग है, अगर छोटा सा भी दाग लग जाता है लोगों को बात करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बन जाता है, लोग उसके ऊपर बहुत चर्चा करते हैं, जिसके द्वारा शासन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक लीडरशिप पोजीशन में है उनको अपने व्यवहार अपना चरित्र अपनी वाणी को इतना शुद्ध रखना है ताकि लोगों को कुछ मौका ही ना मिले उनके बारे में बताने की, उनके बारे में निंदा करने की। तो भगवान रामचंद्र ने सोचा कि अगर मुझे शासन करना है, लोगों का हृदय जीतना है, लोगों का विश्वास जीतना है, लोगों का विश्वास जीते बिना कोई व्यक्ति शासन नहीं कर सकता किसी के ऊपर, इसलिए भगवान रामचंद्र ने सोचा अगर ये व्यक्ति को मुझे शासन करना है, सबसे पहला मुझे सीता को इधर से निकाल देना है, क्योंकि मैंने सोचा कि ये मेरे बारे में मुझे सोच रहा है कि त्रैण्य है करके सोच रहा है। इति लोकात बहुमुखात दुर्यायात अश्मवित दुरायादाशम विदह, जैसे सुखदेव गोस्वामी बातें कहते हैं जो लोग कम बुद्धि वाले होते हैं, लोकाद बहुमुकाद, बहुमुकाद करते हैं कि अनेकों अनेकों इधर उधर के नॉनसेंस बातें जो कहते हैं, तो उनको और रोकना बहुत मुश्किल है। गुरुदेव गोस्वामी कहते हैं जो इस प्रकार के लोग होते हैं जो उत्पटांग की बातें बोलने में कोई रोक नहीं सकता, असंविदः, क्योंकि वो पूर्ण जानकारी नहीं है, अज्ञानी है। अज्ञानी होने के नाते वो अनेकों अनेकों फालतू बातें कहते हैं। पत्या भीतेन स सीता त्यक्त्व प्राप्ता प्रचेताश्रम। तो भगवान रामचंद्र ने क्या किया, ये सब तो मूर्ख है, इन लोगों को इस प्रकार से बात करने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि अज्ञानी है, इससे मैंने ये मैं क्या करूंगा, मैं सीता देवी को त्याग कर दूंगा। मैन विथ फुल फंड ऑफ नॉलेज एंड हेनियस कैरेक्टर स्पीक नॉनसेंसिकली फियरिंग सच रास्कल, उनसे डर के रामचंद्र अबैंडन्ड हिज वाइफ, क्योंकि इस प्रकार के लोग फालतू में मेरा नाम बदनाम करेंगे और भी अनेकों अनेकों बदनामी का कार्य करेंगे, इससे मैं क्या करूंगा, उनकी इच्छा के अनुसार मैं अपना पति को पत्नी को त्याग कर दूंगा। सो ऑल्दो शी वाज प्रेग्नेंट, उस समय वो गर्भवती थी, वो गर्भवती होने पर भी भगवान रामचंद्र ने क्या किया, सीता को उन्होंने क्या किया, दस सीता देवी वेंट आश्रम वाल्मीकि आश्रम में उन्होंने भेज दिया। रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है किस प्रकार भगवान रामचंद्र ने बुलाया था लक्ष्मण को ये कार्य करने के लिए। लक्ष्मण क्योंकि छोटा भाई है, उनको करना ही पड़ा, ही हैड टू डू। तो बाद में व्हेन द टाइम केम द प्रेग्नेंट मदर सीता गेव बर्थ ट्विन ट्विन सन्स, जो समय आया दो बच्चों को जन्म दी जिनका नाम था लव और कुश, और वाल्मीकि मुनि ने सारा कार्यक्रम किया। लक्ष्मण ने दो बच्चों को जन्म दिया, अंगद और चित्रकेतु। भरत ने दो बच्चों को जन्म दिया, तक्षक और पुष्कला। और शत्रुघ्न ने दो बच्चों को जन्म दिया, सुबाहु और श्रुतसेना। और भरत ने क्या किया, अनेकों ने जगह उन्होंने गंधर्वों को ऊपर विजय प्राप्त करके भगवान रामचंद्र को बहुत सारा संपत्ति अर्पण किया। और शत्रुघ्न राक्षसों को मारा, खास करके लवणासुर को मारा जो मधु के पुत्र हैं, और मथुरा नामक शहर को शत्रुघ्न ने बताया। अभी आज का जो श्लोक है, मुनौ निक्षिप्य तनयो, सीता देवी क्या की अपने आश्रम में, सीता देवी ने अपने दो पुत्रों को मुनि के हवाले कर दिया, कहा कि वाल्मीकि जी आप उसको देखभाल करो। सीता भर्तरा विवासिता, तो सीता देवी ने क्या किया, उन्हें सोचा कि मेरे पति ने मुझे त्याग कर दिया है और मैं भगवान रामचंद्र के बिना कैसे रह सकती हूं, भगवान रामचंद्र के विरहाग्नि को सहन नहीं कर पाते हुए सीता देवी ने क्या किया, ध्यायन्ति रामचरणौ भगवान रामचंद्र चरण कमलों के ऊपर ध्यान करते हुए विवरम प्रविविशेषः, वो स्थिति धरणी में वापस प्रवेश कर ली। तो ये श्लोक में तात्पर्य में कहा गया है कि सीता देवी भगवान रामचंद्र का विरह को सहन नहीं कर पाई। तो प्रश्न आता है, सहन नहीं कर पाने की वजह सीता देवी जो है पृथ्वी माँ में जाके अपने आप समा गई, इतनी शरीर त्याग कर दिया, शरीर त्याग तो होता नहीं, भगवान के अंदर का शक्ति है, लेकिन फिर भी अब प्रकट हो गई सीता देवी। तो प्रश्न उत्पन्न होता है, भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों को छोड़ के द्वारका और मथुरा गए तो उस समय गोपियों ने अपने शरीर को त्याग क्यों नहीं किया, अपना प्राण क्यों नहीं त्याग किया, वो जीवित थी। क्या भगवान रामचंद्र के प्रति दो विरह है सीता देवी का, वो विरह जो है तीव्रता उनका, गोपियों का विरह से तीव्रता ना, दोनों का विरह था, लेकिन सीता देवी ने क्या किया, अपना शरीर को त्याग किया, अप्रकट हो गई। लेकिन सारे गोपियां वो सोच रहे थे कृष्ण के बिना हम जिएंगे कैसे, हम अभी हम शरीर त्याग करेंगे। लेकिन जब शरीर को त्याग करने वाले थे उस समय उनके मन में एक बात स्मरण में आई, कृष्ण जब जा रहे थे उन्होंने कहा गोपियों को मैं वापस आऊंगा, तब वो सोचने लगी अगर हम शरीर त्याग करेंगे, कृष्ण मान लो वापस आए और हम हमारा दर्शन नहीं प्राप्त हुआ उनको, कृष्ण दुखी हो जाएंगे, तो कृष्ण दुखी हो जाएंगे। ये बात को स्मरण करते हुए अपना प्राण जो है वो बना के रखी थी। संस्कृत में विरह का जो वर्णन है शास्त्र में अनेकों अनेकों जगह हुआ है। एक शास्त्र है रस शास्त्र जिसके अंदर वर्णन हुआ है, प्रेम का पूर्ण अनुभूति तभी होगा जब विरह का अनुभव हो। जैसे उजाला का महत्व तभी मालूम पड़ेगा जब अंधेरा हो, उसी प्रकार भगवान का विरह का अनुभव तभी होगा, जब तक विरह का अनुभव नहीं होगा तब तक संयोग का अनुभव नहीं हो पाएगा। गोपियों का जो रास जिला में जब रास करना शुरू किए सब गोपियों में मान आया, तो भगवान रामचंद्र ने सोचा, कृष्ण ने सोचा इनको बहुत मान आया, चलो मेरी संगति क्या होता है उसकी महिमा को वर्णन करने के लिए मुझे उनको विरह देना होगा। इससे उस रात से भगवान अप्रकट हो गए। जब भगवान अप्रकट हो गए सारे गोपियां कृष्ण के विरह में रोने लगी, इधर उधर पागलों जैसा घूमने लगी, गोपी गीत गाई। तो अगर विरह नहीं होता गोपियों के मुख से गोपी गीत नहीं निकलता जो भागवत के सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना माना जाता है। एक बार भगवान रामचंद्र सीता देवी के साथ बैठे थे, वो मन ही मन में हंस रहे थे जब सीता देवी ने कहा आप मेरे प्राणनाथ हो, हमेशा मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ, आपका ही सेवा करना चाहती हूँ। भगवान रामचंद्र हंस रहे थे अपने आप। तो सीता देवी ने पूछा भगवान रामचंद्र से आप क्यों हंस रहे हो, तो रामचंद्र ने कहा आपकी भक्ति को सारा जगत में मैं प्रकाशित करना चाहता हूँ। वो समय आएगा जिस दिन आपकी भक्ति जो है उसकी महिमा सारा जगत में प्रकाशित होगा। सीता देवी जिस प्रकार वाल्मीकि आश्रम में भगवान रामचंद्र की विरह में अपने जीवन बिताई वर्णन है, रामायण में वर्णन है। अगर कोई व्यक्ति उसको पढ़ेगा और पढ़ के पत्थर को भी सुनाएगा वो पत्थर ही पिघल जाएगा, ऐसा वर्णन है। सीता जी देखी गर्भवती है और अकेले जंगल में बेहोश होके पड़ी है, वाल्मीकि के कुछ शिष्यों ने देखा, वाल्मीकि जी को बुलाया, वाल्मीकि समझ गए कौन है, उनको लेके आश्रम में गए तो सारे आश्रम में जितने भी निवासी है ब्रह्मचारी है वो सब वाल्मीकि को निंदा करने लगे। पता नहीं वाल्मीकि जी ने किसको लेके आज रखा है, गर्भवती स्त्री है, पति ने उनको क्यों त्याग किया, कुछ तो गड़बड़ किया तभी तो त्याग किया है। ऐसे स्त्रियों को जिसका कोई चरित्र नहीं, जो कहाँ कहाँ कौन किसकी पति है क्या है कुछ मालूम नहीं, वैसे स्त्री को आश्रम में रखना ये उचित नहीं है। तब वाल्मीकि को जैसा मालूम पड़ा तो उनके आंखों में आंसू आया, इतनी पवित्र सीता है इनके बारे में कोई जानता नहीं, अगर मैं बोलूं तो भी गड़बड़ है, तो लोग बोलेंगे भगवान रामचंद्र के पास जाके, लेकिन ये गुप्त बात है। तो वाल्मीकि जी ने सारे शिष्यों को बुलाया, बुला के कहा कि ये माता बहुत पवित्र है, आपके अंदर मन में संदेह है उनकी परीक्षा लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो सीता देवी ने कहा मुझे अग्नि में जाना, अग्नि में जाने के लिए तैयार हूं, आप जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार। तब सारे शिष्यों ने निराकरण किया। एक सतीबा साला करके एक बड़ा तालाब है, ये तालाब को पार करो, क्योंकि एक जमाने में ऐसा था कि बहुत प्रसिद्ध तालाब है। एक पक्षी बहुत दूर गई, बहुत देर में आई रात को, तो पक्षी का पति था, उन्होंने कहा कि आप बहुत देर में आए और रात को आपका सतीत्व के ऊपर मेरा कोई विश्वास नहीं है। पक्षी का नाम था फतिबा। तो उन्होंने कहा मुझे क्या करना है। ये पति ने कहा कि तुम ये तालाब को पार करो। तालाब इतना विस्तार है, अयोध्या से अयोध्या के जो थोड़ा सा शहर के तरफ बाहर से लेके पूरा हिमालय तक है उसका तालाब, बहुत बड़ा तालाब। ये सतीबा जो नामक पक्षी है वो पूरा तालाब को पार करके वापस आए। तब से सतीबा ने अपनी जो पवित्रता को पतिव्रता को साबित किया, तब से उसका नाम पड़ा सतीबा तालाब। तो भगवान वाल्मीकि ने कहा ठीक है, सीताजी को कहा कि आप तालाब को पार करो। सीताजी गर्भवती है, इतना बड़ा तालाब कौन पार करेगा। सीताजी भगवान रामचंद्र का नाम लेके कूद गई। तो तालाब का जो लहर है, सीतादेवी को पूरा तालाब की ओर पूरा उधर तक लेके गई, वापस वही लहर जो है सीतादेवी को वापस लेके आई। तो इस प्रकार सीताजी को नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करना पड़ा। दिन रात सीता जी का एक ही कार्य था, आंखों में आंसू बहाते हुए पूरा सामने का जो पूरा जमीन है पृथ्वी है वो गीला हो गया था। अपनी उंगलियों से सीता जी राम का नाम उस के ऊपर लिख रहे थे। यानी भगवान रामचंद्र के प्रति जो भक्ति है वो भक्ति का भाव जो है परम उत्कृष्ट तभी हृदय में प्रकट होता है जब विरह हो। भगवान भक्तों को विरह में इसलिए डालते हैं ताकि उनकी भक्ति का महिमा का प्रचार हो। वो कितना महान भक्त है, कितना श्रेष्ठ भक्त है वो तभी मालूम पड़ेगा जब विरह हो। विरह के समय में और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके अंदर कहा गया है, ध्यायन्ति रामचरणौ, भगवान रामचंद्र की चरण कमलों में ध्यान करते हुए। वैसे भगवान सामने हैं तो उनके ऊपर ध्यान जो है एक ही स्वरूप में होता है, लेकिन विरह में जो ध्यान है एक ही समय अनेकों स्वरूपों का ध्यान होता है। जैसे मान लीजिए कोई माँ है, वो बच्चा स्कूल से आना एक बजे आया नहीं, दो बज गया, तीन बज गया, व्याकुल होते हुए एक बच्चे के लिए, बच्चे के विरह में माँ के मन में बच्चे का अनेकों अनेकों स्वरूप आता है, कहीं बैठा हुआ स्वरूप, कहीं खड़ा हुआ स्वरूप। एक ही समय अनेकों स्वरूपों का स्मरण जो है वो विरह में होता है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अनुसार विरह जो है सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैटर। श्री चैतन्य महाप्रभु हमको भगवान का विरह की भक्ति प्रदान करने के लिए आए, लेकिन भगवान का जो कृष्ण का कृष्ण विरह की जो भक्ति है, किस प्रकार गोपियों ने कृष्ण के विरह में भक्ति किया, वो भक्ति हमको प्रदान करने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु। लेकिन गोपियों का विरह में इधर सीता जी का विरह में थोड़ा सा अंतर है। ये बात हमको चैतन्य महाप्रभु का प्राकृतिक लीला में मालूम पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु का प्राकृतिक के अंतरंग कारणों में एक कारण ऐसा है भगवान ये जानना चाहते हैं कि मेरे प्रति जो भक्ति है, मेरा प्रेम है, वो क्या होता क्या है। उनके संबंध में ऐसा कहा गया जब भगवान रामचंद्र के रूप में आए तो उनका श्रृंगार रस को अनुभव किया सीता जी के साथ में, लेकिन एक पत्नी व्रत और विरह को अनुभव किए, लेकिन विरह कैसा था, आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियलता का अर्थ क्या है कि सीता जी को जबरदस्ती उनको बाहर भेजना पड़ा, नहीं उनको लेके जाओ इधर से, लेकिन वो प्रसंग ऐसा नहीं था, स्वाभाविक प्रसंग नहीं था। अगर भगवान रामचंद्र चाहते सीता जी को अपने पास ही रख सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा प्रसंग था कि भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर स्वाभाविक तरीके से जाना पड़ा। यू हैड टू गो। कंस का निमंत्रण था और कंस को वध करने के लिए वो बलराम जी के साथ वो निकल पड़े। तो अक्रूर कृष्ण और बलराम को वो लेके गए। तो ये जो रामचंद्र की लीलाओं में कुछ ऐसी कृष्ण ने या भगवान रामचंद्र ने अनुभव किया, अनेकों पत्नियों को होना चाहिए तभी पूर्ण माधुर्य का अनुभव होगा, वो भी परकीय रस का अनुभव नहीं है। और परकीय रस का जो विरह है वो अनुभव नहीं है। ऐसा कहा जाता है, एक तरीके से बताया जाए सारा जगत जो है भगवान रामचंद्र को ये कहता है कि उन्होंने कैसा काम किया। भगवान है, सीता जी ने उनके लिए इतना तपस्या की, इतना कष्ट उठाया, लेकिन एक सेकंड में किसी धोबी का बात सुन के भगवान ने उनको घर से निकाल दिया। इस प्रश्न का जवाब आज तक कोई आचार्य दे नहीं पाए। अनेकों अनेकों राम भक्त है, राम कथाकार, रामायण में निपुण है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब आता है तो चुप हो जाते हैं। लेकिन इस प्रश्न का जवाब केवल चैतन्य महाप्रभु और गौड़ीय संप्रदाय के लोगों ने दिया है। क्यों? भगवान रामचंद्र सारे जगत को सीता जी का जो भक्ति का महिमा को प्रकाशित करना चाहते हैं कि उनकी विरह का जो भक्ति होता है, विरह में जो भक्ति होता है वो सर्वोत्कृष्ट होता है। तो इसलिए ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। सीता जी ने क्या किया? ध्यायन्ति रामचरणो विवरम प्रविशेषः। विवरम प्रविशेषः, विवरम का अर्थ है कि पृथ्वी, पृथ्वी में वो प्रवेश कर लिया। पृथ्वी में क्यों प्रवेश किए? क्योंकि सीता जी कोई और कोई है नहीं है, वो भू देवी है। लक्ष्मी जी के तीन स्वरूप होते हैं, श्री भू नीला, श्रीदेवी भूदेवी नीला देवी, और सीता जी भूमि से प्रकट हुई इसलिए उनका नाम है भूदेवी। तो आप सबको मालूम है जब जनक महाराज हल जोत रहे थे उस समय उनको बहुत बड़ा पेटी मिला जिसके अंदर सीता जी थी। सीता जी का माँ कौन है? पृथ्वी कौन है? पृथ्वी जी जो है सीता जी का माँ है। माँ के अंदर उन्हें प्रवेश कर लिया और भगवान रामचंद्र के नित्य लीलाओं में वो प्रवेश कर ली। ये जो लीला है रामायण में बहुत अद्भुत तरीके से वर्णन है। किस प्रकार लव कुश युद्ध करने लगे अयोध्या के राजाओं के साथ, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ अश्व को बांध के रख दिया था। तो उस समय सबसे पहला शत्रुघ्न आया, शत्रुघ्न मार के बेहोश कर दिए थे। भरत आया, भरत को ये बेहोश कर दिए थे। लवकुश और इन शत्रुघ्न या भरत और लक्ष्मण, इनके साथ जो संवाद है बड़ा अद्भुत संवाद है। तो लक्ष्मण को भी बेहोश कर दिए, इतने शक्तिशाली थे लवकुश। वाल्मीकि आश्रम में तो दो बच्चे इतना अच्छा सीख लिए थे। जब भगवान रामचंद्र से युद्ध करने के लिए आए तब उस समय भगवान रामचंद्र ने बाण निकाला। तो बाण जैसे निकाला भगवान रामचंद्र ने और लवकुश को मारने ही जा रहा था, क्योंकि मालूम नहीं भगवान रामचंद्र ये दो बच्चे कौन हैं। तब सीता जी भागते हुए आई, दोनों बच्चों के सामने खड़े हो गए, बोलने लगी ये दोनों आपके पुत्र हैं। तो भगवान रामचंद्र ने कहा हे सीते, उस समय धरती जो है वो फट गया था। कुछ लोगों का ऐसा कहना है भगवान रामचंद्र ने बाण को रखा था धनुष के ऊपर, कभी भगवान रामचंद्र का बाण कभी नष्ट नहीं जाता। तो उनके बाण के प्रभाव से कुछ लोगों का कहना है कि धरती जो है फटी, धरती के ऊपर फेंका, तब वो सीता जो है उस धरती के अंदर प्रवेश कर ली। उस समय सीता जी के विरह में भगवान रामचंद्र रोते हैं, निखराई। तो दो प्रकार का विरह है, भक्त के विरह में भगवान रोते हैं और भगवान के विरह में भक्त रोते हैं। एक तो हम सोच सकते हैं कि भगवान के विरह में भक्त रोते हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए भक्त के विरह में भगवान भी रोते हैं। एक खाई बद्ध जीव वो भी भगवान के भक्त है, लेकिन हम भूल गए तो उनको देख के भगवान के अंदर दया आती है, और उनके जो विशुद्ध प्रेम भक्त होते हैं उनके विरह में भगवान भी रोते हैं। हमारे जगन्नाथ जी कृष्ण हैं, वो कौन से कैसे किस प्रकार के कृष्ण हैं? वो कृष्ण हैं जो गोपियों के विरह में रो रहे हैं पर कृष्ण। तो ये विरह जो है उसके अंदर ही अनेकों अनेकों प्रकार का विभाजन है, जिसको भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो जो गौड़ीय वैष्णव धारा में है, जो गौड़ीय वैष्णव धारा में विरह भक्ति का तत्व को जानता है, वो उनके सामने अनेकों अनेकों प्रकार की भक्ति को सामने रखा जाए वो सब फीका पड़ जाता है। तो ये विरह भक्ति जो है ये हमारा संप्रदाय का मूल आधार है। इसलिए कहा गया है चैतन्य महाप्रभु को विप्रलंब भाव को प्रदान करने वाले हैं। तो आज ये श्लोक में सार यही है, सीता जी ने भगवान रामचंद्र के विरह में, जैसे हम शिक्षाश्रम में जाते हैं गाते हैं हम लोग कि गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में क्या फायदा, शून्यायदम इदत जगत, जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, सारा जगत शून्य है गोविंद के विरह में, क्या फायदा इस जीने का कृष्ण के संपत्ति, कृष्ण के बिना, भगवान रामचंद्र के बिना, ये भाव हमको स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? उनका प्रश्न है कि एक गोपी ने ये कहा, एक्चुअली गोपी जो है भक्त का निंदा नहीं किया, सीता का निंदा नहीं किया, भगवान रामचंद्र का निंदा किया। क्या रामचंद्र त्रैण्य है कि नहीं? तो प्रसंग ये है कि भगवान रामचंद्र अभी कौन से रूप में है, एक आदर्श राजा के रूप में है। तो मान लो कोई राजा को इस प्रकार निंदा करता है तो राजा को क्या करना चाहिए? ये मूर्ख है, ये लोग इनकी वाणी को बहुत रुकाव रोक नहीं सकते क्योंकि अज्ञानी है। तो मुझे क्या करना होगा? भगवान रामचंद्र चाहे तो उसको दंड दे सकते हैं, मुझे निंदा करते हो साबित करो मैं सही नहीं हूं, बहुत सारा आर्ग्यूमेंट कर सकते थे। मैं सोचता है कि मूर्ख लोग हैं ये, फालतू में इधर उधर बातें करते रहते हैं, उनको रोकना मेरी मूर्खता है, इससे अच्छा मैं क्या करूं, मैं ही ऐसा कार्य करूं जिसके द्वारा वो इस प्रकार की बातें बोलना बंद करे। ये प्रजा होती है वो मूर्ख होती है, सही बात है। तो यही बात जो है आज तक सारे जगत ने क्वेश्चन मार्क रहा है। दो बातें, सीता जी को अग्नि परीक्षा दिया भगवान रामचंद्र ने, दूसरा बात सीता जी को जंगल में फेंक दिया, वो भी गर्भवती थी उस समय। ये दो क्यों किया उसका कोई उत्तर नहीं है रामायण के प्रवक्ताओं के पास। रामायण के बड़े बड़े प्रवक्ता हुए, बड़े बड़े तत्वज्ञानी हुए, लेकिन ये दो प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं आए। केवल चैतन्य महाप्रभु ये दो प्रश्नों का जवाब दिए, ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। सही बात है, एक ग्रंथ है महाभारत तात्पर्य निर्णय, उसके शुरुआत के जो 9 अध्याय हैं, 30वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय, 7 अध्याय 8 अध्याय, उसने रामायण के ऊपर व्याख्या किया गया श्रीपाद मध्वाचार्य के द्वारा। उसके अंदर भी ये दो प्रश्नों का निराकरण नहीं किया श्रीपाद मध्वाचार्य ने, क्योंकि भगवान रामचंद्र कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि अगर एक धोबी उनकी प्रजा है, क्या उनकी पत्नी उनकी प्रजा नहीं है? तो ये दो क्वेश्चन मार्क रहा रामलीला में, जिसको आज तक कोई निराकरण नहीं कर पाया। केवल चैतन्य महाप्रभु ने निराकरण किया, क्योंकि विरह भक्ति, विरह भक्ति जब तक अनुभव नहीं होता तब तक प्रेम क्या वो नहीं मालूम है। लेकिन जैसे विरह बाकी सब बड़ा बड़ा बात की छोड़िए, आपके पास 5 उंगलियां हैं कि नहीं, 10 उंगलियां हैं कि नहीं, रोज सोचते हो उसके बारे में, मेरे पास 10 उंगलियां हैं, देखते हो कोई नहीं, देखते हो जब कट जाता है एक उंगली दूसरी को देखते रहते हो है कि नहीं। जैसे बच्चा जो है माँ को निंदा करता है, क्या बनाया ये करा है, जो बच्चा बड़ा होकर हॉस्पिटल जाता तब मालूम पड़ता है कितना अच्छा थी माँ, क्या क्या फ्रेंड्स खिलाती थी जब कोई व्यक्ति नहीं होता आपके सामने, जब कोई जो प्रिय वस्तु नहीं होता है, व्यक्ति व्यक्ति नहीं होता है, तब उसका घर महत्व मालूम पड़ता है। सामने था ये तो है ही, सामने क्या है, जब नहीं है तब मालूम पड़ता है। और कोई प्रश्न है? वो भागवतम के जो 5 अध्याय है वो अध्याय पढ़ लीजिए, उसके अंदर आपको पूरा उसका व्याख्या मिल जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मंद्राश्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।